आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। दोस्तों में बात चल रही हो तो अचानक से बताना कि आप किसी को जानते हैं जिनके दोनों बेटे डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने गए हुए हैं। एक बेटा लखनऊ मेडिकल कॉलेज से और दूसरा बेटा लंदन मेडिकल कॉलेज से। आपके दोस्त यकीनन लंदन जाकर पढ़ाई करने वाले को ज्यादा होशियार मानेंगे। शायद मैं भी ऐसा ही करूंगा, लेकिन ये हमारी सोच आखिर ऐसी क्यों है? इंडिया क्लासिफाइड पॉडकास्ट पर आप सुन चुके हैं कि आचार्य चरक ने कोविड जैसी बीमारी के बारे में कई सालों पहले ही लिख दिया था। कैसे महर्षि सुश्रुत की किताब को आधार मानकर मॉडर्न सर्जरी के प्रिंसिपल्स सेट किए गए हैं और कैसे हमारी सभ्यता के पास एंशियंट टाइम में न्यूक्लियर वॉरफेयर की क्षमता मौजूद थी। तो आखिर बार बार क्यों हम लोग विदेशी टेक्नोलॉजी और ज्ञान को भारत के अपने ज्ञान कोश से सुपीरियर मानते हैं? इस एपिसोड में आज मैं आपको एक और ऐसी चीज बताने वाला हूं जो दर्शाती है कि भारत का ज्ञान दुनिया के मुकाबले बहुत आगे है। तमिलनाडु के सिरु करुम्बुर गांव में एक मंदिर है, श्री सुंदरा कामाक्षी टेम्पल। मंदिर 800 साल पुराना है, देखने में किसी आम मंदिर जैसा है, लेकिन इस मंदिर के आर्किटेक्चर पर जब नजर जाती है तो कुछ ऐसा दिखता है जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान मां के गर्भ में एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है, इस बात का पता आज के समय में हम सोनोग्राफी से लगा सकते हैं, लेकिन सोनोग्राफी की इन्वेंशन 20th सेंचुरी में हुई थी। इस टेक्नोलॉजी से ही साइंटिस्ट एक्यूरेटली डिपिक्ट कर सकते हैं कि हर कुछ दिन बाद गर्भ में पल रहे बच्चे की फॉर्मेशन किस स्टेज पे है। लेकिन 800 साल पहले बने इस मंदिर में इन फॉर्मेशंस को रॉक कार्विंग्स में दिखाया जा चुका है। आखिर ये कैसे संभव है? वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे इस मंदिर को बनाने वाले लोगों ने ये पता लगाया कि गर्भ में एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है? आइए सुनाता हूं आपको इंडिया क्लासिफाइड के इस एपिसोड में श्री सुंदर कामाक्षी टेम्पल की इस मिस्ट्री का सच।
मिस्ट्रीज, थियरीज एंड द अननोन। द इंडिया क्लासिफाइड पॉडकास्ट, अ रेड एफएम ओरिजिनल।
नमस्कार, मैं हूं पूरब और आप सुन रहे हैं इंडिया क्लासिफाइड। इंस्टाग्राम पर @redfmpodcast पर या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @rjpoorab पर हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है। आइए बात शुरू करते हैं इस मंदिर के किस्से से। श्री सुंदरा कामाक्षी टेम्पल, 800 साल पहले इसे चोला डायनेस्टी के राजाओं ने बनाया था। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि सदियों पहले जब इन्वेडर्स तमिलनाडु आए थे तब उनकी नजर इस भव्य मंदिर पर पड़ी, लेकिन गांव के लोगों ने अपनी इस धरोहर को बचाने के लिए मंदिर को मिट्टी और रेत के नीचे छिपा दिया। कई दशकों तक इस मंदिर पर किसी का ध्यान नहीं गया। रेत के नीचे चोला डायनेस्टी के इतिहास का एक टुकड़ा दफन हो गया। भारत में अंग्रेज आए, हमें गुलाम बनाया, फिर हमने उन्हें इस देश से निकाला, बगावत की और अपनी आजादी हासिल की। आजादी के कुछ साल बाद 1958 में वेल्लोर शहर के कलेक्टर भास्कर टोंडा ईमन ने मंदिर को फिर से दुनिया के सामने उजागर किया। यहां पर शिवजी और मां सुंदरा कामाक्षी के अवतार के अलावा और भी कई प्राचीन मूर्तियां हैं, लेकिन जो चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है वो है यहां की दीवारों पर बनी हुई आकृतियां, खास करके एक मां के गर्भ में सोए हुए बच्चे की आकृति। स्कल्पचर में बच्चे की पोजीशन कुछ इस प्रकार है कि लगता है मानो इसे किसी प्रेग्नेंट औरत के सोनोग्राफिक स्कैन को लेकर बनाया गया हो। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सोनोग्राफी का क्लिनिकल यूज सबसे पहले 1956 में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में हुआ था और भारत में इसके करीब 25 साल बाद 1980 के दशक में सोनोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी इस टेक्नोलॉजी को भारत में आए अभी पूरे 50 साल भी नहीं हुए हैं। तो फिर 800 साल पहले बने श्री सुंदरा कामाक्षी मंदिर में इन आकृतियों का मिलना कैसे पॉसिबल है? और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कार्विंग्स तमिलनाडु के और भी कई प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलती है, जैसे कि काल भैरवनाथ टेम्पल। यहां के स्कल्पचर्स में बने हैं गर्भ में बड़े हो रहे बच्चे के अलग अलग फेजेस। और अरिया तुराई के वरा मूर्तिश्वर मंदिर में तो इससे भी पहले के स्टेजेस बताए गए हैं। यहां एक मछली और मटके के एग्जाम्पल से फर्टिलाइजेशन का साइन समझाया गया है। इन ड्रॉइंग्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के साथ साथ फर्टिलाइजेशन के दो स्टेजेस भी देखे जा सकते हैं। यकीन नहीं होता, लेकिन सोचिए कि सदियों पहले इन चीजों को कैसे स्टडी किया गया होगा। आज हमें सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए माइक्रोस्कोप, एक्सरे और हाईटेक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो क्या उस टाइम पर ऐसे टूल्स थे जो आज की टेक्नोलॉजी से मिलते जुलते थे? अगर थे तो आखिर वो कहां हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारे पूर्वज सिर्फ नॉर्मल प्रेगनेंसी ही नहीं बल्कि सरोगेसी का साइंस भी जानते थे। सरोगेसी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे को जन्म देने के लिए पिता का स्पर्म और माता के एग्स को लेकर एक सरोगेट मदर के गर्भ में प्लेस किया जाता है। अगर आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में सुना होगा तो आप जानते होंगे कि आईवीएफ सरोगेसी की ही एक टेक्निक है, जिसमें स्पर्म और एग्स को लैब में ले जाकर फर्टिलाइज किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसी कई कहानियां हैं जो सरोगेसी की तरफ इशारा करती हैं। जैसे श्रीमद् भगवत महापुराण में कही गई श्री कृष्णा के बड़े भाई बलराम के जन्म की कहानी। लिखा है कि मां देवकी के भाई कंस ने उनके 6 बच्चों को पैदा होते ही मार दिया था। इसीलिए 7वें बच्चे के पैदा होने से पहले ही भगवान ने बच्चे को देवकी की कोख से निकालकर वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी की कोख में रख दिया। इस तरह से रोहिणी बलराम की सरोगेट मदर बनी और इसी वजह से बलराम को रोहिणिया कहकर बुलाया जाता है, जिसका ट्रांसलेशन है सन ऑफ रोहिणी। एक कहानी ऐसी भी है कि भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय की सरोगेट मदर है मां गंगा। इसके अलावा महाभारत में कौरवों के जन्म की कहानी को भी सरोगेसी का एक एग्जाम्पल माना जा सकता है। कहानी के मुताबिक ऋषि व्यास ने रानी गांधारी की कोख से 101 पार्टिकल्स लिए, या यूं कह सकते हैं कि एम्ब्रियोस लिए और अलग अलग मटकों में ट्रांसफर किए। मंत्र जाप और पूजा पाठ के बाद दुर्योधन, उसके 99 बलवान भाई और एक बहन का जन्म हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि आज हमारी सोसाइटी में कई लोग सरोगेसी को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन सदियों पहले इंडियन सोसाइटी इतनी एडवांस थी कि इसे नॉर्मल माना जाता था। प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस के साथ साथ साइंटिस्ट भी हुआ करते थे। क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के साइंस पर एक पूरा उपनिषद डेडिकेटेड है? गर्भोपनिषद नाम की एक किताब 8th सेंचुरी में लिखी गई। इसमें बच्चे के कंसीव होने से लेकर पैदा होने तक के हर स्टेज को डिटेल में डिफाइन किया गया है। यह भी बताया गया है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसे अपने पिछले जन्म याद होते हैं, जो वो पैदा होने के बाद धीरे धीरे भूलने लगता है। 1200 साल पहले लिखी गई इस किताब की एक्यूरेसी को आज फॉरेन रिसर्चर्स भी अप्रिशिएट करते हैं। पॉल ड्यूसेन नाम के एक फेमस जर्मन प्रोफेसर ने कहा है कि गर्भोपनिषद फिजियोलॉजी और मेडिसिन की एक भरोसेमंद मैनुअल है। भारत भर के प्राचीन मंदिरों को देखकर लगता है कि सिर्फ ये भगवान की पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि इनका मकसद उससे बढ़कर था। कल्चर और कला का इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक किया जाता था और इसका साधन सिर्फ मंदिर नहीं संगीत भी था। 15th सेंचुरी में ओडिशा के जसोबंत दास ने बड़ा मायावी जीवन हुए कहारी नाम के भजन में फीटस की मंथ वाइज पोजीशन और शेप के बारे में बताया है। जैसे फर्स्ट मंथ में बेबी एक व्हाइट स्पॉट जैसा दिखता है, सेकेंड मंथ में एक छोटी मछली जैसा, थर्ड मंथ में उसके हाथ पैर और कान डेवलप होते हैं, फोर्थ मंथ में बोन्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, वगैरह वगैरह। इस भजन में दी गई डिटेल्स को मॉडर्न साइंस भी नकार नहीं सकता। तो हमारे सामने सवाल भी यही है कि एक्सरे और सोनोग्राफी जैसे मॉडर्न इन्वेंशन के बिना इतनी माइन्यूट जानकारी हासिल कर पाना कैसे पॉसिबल था। 800 साल पहले हमारे यहां किस तरह के टूल्स और इक्विपमेंट्स होंगे? क्या वो टूल्स आज की मशीन से भी ज्यादा हाईटेक थे? जिस भारत की गिनती आज डेवलप्ड देशों में नहीं होती, वो सदियों पहले शायद सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन हुआ करता था। आपको क्या लगता है, आखिर एंशियंट मंदिरों पे ये एडवांस मेडिकल साइंस के कॉन्सेप्ट कैसे आए? क्या ये भी टाइम ट्रेवल का कोई साइन है, या ये बताता है कि सोनोग्राफी और एक्सरे के अलावा भी कोई तरीका था, कोई टेक्निक थी जिससे ह्यूमन बॉडी के बारे में जान पाना पॉसिबल था? आपको अगर इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। बताइए हमें हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके, रेड एफएम पॉडकास्ट के ऑफिशियल पेज या मेरे हैंडल @RJPoorab पर। मेल कीजिए podcast@redfm.in पर। मैं आपसे फिर मिलूंगा इंडिया क्लासिफाइड के अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।
You are listening to Red Podcast India Classified. Written by Mihir Joshi, Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.